पानी डाल जी ऐसी होना चाहिए। फिर हम पुत्र की बरात जा रही है खड़े हो जाएं तो उसको तिरस्कार करके भगाए।
जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजो के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजो के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर। पिछले दिनों हम लोगों ने जीवन जीने की पद्धति पर विचार किया है। एक गृहस्थ भी घर गृहस्थी में रहकर अपना जीवन जीता है और एक दिन घर गृहस्थी से विरक्त होकर जब वो साधु की तरह अपना जीवन जीता है तो दोनों तरह का जीवन किस तरह जीना चाहिए इसके बारे में आचार्यों ने बहुत स्पष्ट रास्ता, बहुत सरल रास्ता हमें दिखाया है हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए। दोनों के जिम्मे एक एक चीज आई है। सदगृहस्थ अपनी घर गृहस्थी में संतोषपूर्वक अपना जीवन जिए और जब वो घर गृहस्थी से विरक्त होकर साधु का जीवन जिए तो समता भाव बनाए रखे। ये संतोष किस तरह से आएगा या कि संतोष आ जाने पर जीवन किस तरह का होगा, तो हमने इस बात पे भी विचार किया है कि जितना जितना हमारे जीवन में आत्म संतोष बढ़ता जाता है उतनी अधिक हमारे विषयों के प्रति आसक्ति भी घटती जाती है। हमें अब अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए हिंसा, झूठ, चोरी या परिग्रह संचित करना या अपनी दृष्टि खोटी करना अब ठीक नहीं जान पड़ता है, क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम अज्ञानवश और इन पाप प्रवृत्तियों की तरफ चले जाते हैं। और यदि हमने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है तो फिर इन पापों की तरफ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो पाप से मुक्त जो प्रवृत्ति है वो बहुत आत्म संतोष पूर्वक जीवन जीने की एक पद्धति है। और उसके साथ साथ हमने ये भी घर गृहस्थी में रह करके जाना कि कैसे कोई अपने उन व्रतों की रक्षा करने के लिए अनावश्यक पाप से बचे। घर गृहस्थी में जितना आवश्यक है वो उतना करता है अनावश्यक पापों से बचने लगता है। और इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में रह करके भी एक व्यक्ति चाहे तो मुनियों के जैसे समता भाव को धारण करने के लिए प्रयत्न भी कर सकता है। सुबह शाम दोपहर जैसा जितना समय मिलता है उस समता भाव की साधना करने के लिए वो प्रयत्न करता है, कर सकता है। इतना ही नहीं, और आगे जाकर के कहते हैं कि वो चाहे तो घर गृहस्थी के बीच होने वाले आवश्यक पाप से बचने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जो गृहस्थ के जीवन में वो चाहे तो शामिल कर सकता है, पूजन की प्रक्रिया। रुधिर मलम धावते वारी, जैसे कि किसी के कपड़े पर रक्त गिर जाता है वो उसे धोने के लिए जल का उपयोग करता है, जल से उसे धो लेता है, ठीक ऐसे ही 24 घंटे घर गृहस्थी के पाप से मलिन चित्त को निर्मल बनाने का अगर कोई अनुष्ठान है तो वो पूजा है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने गृहस्थ के जीवन को एक ऊंचाई देने के लिए, एक आत्म विकास के लिए बहुत सहज सी प्रक्रिया दी है, जिस पर कि हमने पिछले दिनों विचार कर लिया है। आज सिर्फ इतनी बात और शेष रही है कि जीवन अच्छे से जीते जीते जब एक दिन मृत्यु सामने आ जावे तब क्या मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरे अपने मन में क्या भाव आना चाहिए। मृत्यु का सामना किस तरह से करना चाहिए? क्या मृत्यु हमारे जीवन को पूर्णतः नष्ट करने वाली कोई चीज है? क्या मृत्यु से अब हमारी चेतना ही नष्ट हो जाएगी? अगर ऐसा हमें लगता है तो हमें अपनी इस धारणा को बदल लेना पड़ेगा। मृत्यु से आत्मा नष्ट नहीं होती, मृत्यु तो सिर्फ इस देह की होती है। प्राणों के वियोग का नाम मृत्यु है, प्राणों के संयोग का नाम जन्म है। लेकिन हमारी आत्मा या चेतना जन्म मरण दोनों से पार है। ऐसी स्थिति में इस देह के परित्याग के समय मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी ऐसा भ्रम रख करके भयभीत होना ठीक नहीं है। दूसरी चीज कि मृत्यु तो अनिवार्य है, जो चीज अनिवार्य होती है उससे भयभीत होने से काम नहीं चलता, उससे बचने का उपाय खोजना चाहिए। और बचने का उपाय भी कैसा खोजें, क्योंकि एक बलवान व्यक्ति भी मरता है, कमजोर व्यक्ति भी मरता है, धनवान भी मरता है, दीनहीन अभावग्रस्त भी मरता है। मैं अगर ये सोचूं कि मैं बलवान हो जाऊं तो मृत्यु से बच सकता हूं, मैं धनवान हो जाऊं तो मृत्यु से बच सकता हूं, मैं किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लूं तो संभव है कि मैं मृत्यु से बच जाऊं, तो ऐसा भी नहीं है। मृत्यु से बचने का ये उपाय नहीं है कि मैं अपने पास धन संपदा जोड़ लूं या शरीर की शक्ति बढ़ा लूं या कि कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूं जिसके लिए कि मैं पूरा जीवन लगाता हूं। यही विचार मेरे भीतर रहता है कि शायद ये सब चीजें मुझे मृत्यु से बचा लेंगी, तो यह भी ठीक नहीं है हमारा विचार। मृत्यु से ये सब चीजें भी ना बचा पाएंगे, तो मृत्यु से कोई और है जो बचा सकता है? नहीं, मृत्यु से तो यहां बचाने वाला कोई भी नहीं है। तब फिर मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है कि मैं देह के प्रति आसक्ति ना रखूं। मेरी देहाशक्ति मुझे बार बार देह धारण करने में कारण बनती है, और जब जब भी मैं देह धारण करूंगा तो देह का वियोग भी होगा, उसी का नाम तो मृत्यु है। मैं जन्म की इस प्रक्रिया को बार बार जो मुझे जन्म लेना पड़ता है उसको समाप्त कर दूं तो मेरा मरण भी नहीं होगा। अब देखें हम कि अपने इस जन्म और मरण दोनों की प्रक्रिया को समाप्त करने का क्या कोई उपाय है, देहाशक्ति को घटाने का क्या कोई उपाय है। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जो व्यक्ति संलेखना पूर्वक मरण करता है वही अपने जन्म मरण की इस प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है। संलेखना देहाशक्ति को कम करने या कि देहाशक्ति को नष्ट करने की बहुत आसान सी प्रक्रिया है। ये कब ली जाती है, कैसे ली जाती है, कौन इसे ले सकता है, क्यों ली जाती है, यह तो हमने विचार कर लिया। क्योंकि मुझे ये बार बार जन्म और मरण अब ठीक नहीं लगता। मैं मरण से भयभीत रहता हूं, मैं मरण से बचने का उपाय खोज रहा हूं, और उपाय खोजते खोजते मुझे ये मालूम पड़ गया है कि जन्म के साथ जुड़ा हुआ है मरण, और जन्म होता है मेरे अपने देह में आसक्ति की वजह से। इसलिए अब मैं देहाशक्ति कम करने के लिए उपाय यही संलेखना है यह कर रहा हूं। तो संलेखना क्यों की जानी चाहिए, ताकि देहाशक्ति घटे। होता यह है कि जितनी देह के प्रति आसक्ति होती है और जब देह छूटती जान पड़ती है तो उतनी ही ज्यादा उसको पकड़ने की इच्छा होती है। जिस चीज के प्रति हमारी आसक्ति होती वो चीज अगर हमसे छूटने लगे तो फिर कैसा लगता है, घबराहट होती है किस बात की कि अब ये छूटी और मुझे इसे पकड़ लेना चाहिए। और जितना ज्यादा हम उसे पकड़ते हैं उसके छूटने में उतनी ज्यादा पीड़ा होती, वो छूटना तो अनिवार्य ही है। और अगर हम उस पर से अपनी ग्रिप हटा लें, उस पर से अपनी आसक्ति हटा लें, तो छूट जाए तो छूट जाए, मुझे उससे कोई पीड़ा नहीं होने वाली। चीज मेरी हो और फिर वो मेरे से अलग हो जावे तो मुझे पीड़ा देती है। मैं उसको अपना ना मानूं और फिर वो मेरे से अलग हो जावे तो ज्यादा मुझे पीड़ा नहीं होती। इस देह को मैं जीवन भर अपना मान करके और इससे काम लेता रहा, अब यह थक चुकी है, मेरे लिए अब उतनी उपयोगी नहीं रही है, इसलिए इसके छूटने से पहले मैं इसकी आसक्ति को छोड़ दूं, वरना यह तो जीर्ण शीर्ण होकर के छूटेगी ही, और इसके छूटने पर मुझे दुख होगा अगर मेरी आसक्ति होगी तो, और मेरी आसक्ति मुझे दुख के साथ साथ पुनः इस देह को धारण करने के लिए कारण बनेगी। ये दोनों चीजों से मैं बचना चाहता हूं, मैं इस देह के दुख से बचना चाहता हूं, इस देह के बार बार धारण करने से बचना चाहता हूं, इसलिए ये उपाय खोज लिया कि जब भी मरण निकट हो, देह छूटने को हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम देह से आसक्ति घटा लेंगे और समता पूर्वक देह को छूट जाने देंगे। समता पूर्वक देह को छूट जाने देना या छोड़ देना, इसका नाम है संलेखना। वो प्रक्रिया अलग है जिसमें कि हम झटका देकर के देह को नष्ट करते हैं, जीवन से निराश होकर के। और इसलिए जीवन से निराश होकर जो अपने देह को नष्ट करने की प्रक्रिया है उसे आत्मघात कहते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन छूटती हुई देह में से अपनी आसक्ति घटाकर उसे समता पूर्वक छूट जाने देना, छोड़ देना, इसका नाम संलेखना है। एक सुसाइड है और एक आइडियल डेथ है, एक मरण का आदर्श ढंग है और दूसरा
जीवन से निराश होकर के मृत्यु को अंगीकार करना है। एक में जीवन की सफलता है और एक में जीवन असफल हो गया। हमें आज तक अपने जीवन में अगर हमने सफलता हासिल की है तो फिर मृत्यु को ऐसे ही सफलतापूर्वक अंगीकार करना चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि जो मृत्यु को जितनी आसानी से स्वीकार करता है उससे मालूम पड़ता है कि जीवन उसका कितना सफल हुआ है या कि जीवन असफल हो गया। विनोबा ने लिखा कि आपने जीवन कैसे जिया ये तो मैं उस समय जानूंगा जब आप मरण के निकट होंगे। आपके मरण को देख करके जान जाऊंगा कि आपने जीवन कैसे जिया होगा। जिसने बहुत आत्मसंतोष और समतापूर्वक जीवन जिया है वही मृत्यु के समय और संतोष धारण कर सकता है और समतापूर्वक अपनी देह को छोड़ सकता है। इसलिए ये संलेखना की प्रक्रिया समझना अनिवार्य है जीते जी। कब मुझे ये अवसर आएगा कि मेरी देह अब छूटने वाली है कैसे पता लगेगा? तो एक श्लोक आचार्य भगवंतों ने लिखा कि उपसर्गे दुर्विक्षे जरसिरोजायाम चन्नी प्रतिकार। ये स्थिति निर्मित हो जावे तो ये निश्चित हो गया कि अब देह छूटेगी। ऐसा उपसर्ग आ गया जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं है। उपसर्गे निष्प्रतिकारे, सब पे लगाएंगे निष्प्रतिकार। उपसर्ग समझते, संकट या विपत्ति का नाम उपसर्ग है। और वो विपत्ति चार तरह से आ सकती जीवन में। मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर संकट आ सकता है, पशुओं के द्वारा भी आ सकता है संकट, किसी देवी देवता के द्वारा भी संकट आ सकता है और प्रकृतिकृत संकट भी आ सकता है। भूकंप है, प्रकृतिकृत संकट है। ऐसी स्थिति में देह का छूटना निश्चित ही हो गया कि अब तो छूटेगी, तब फिर क्या करना? तब तैयार हो जाना। दुर्भिक्षे, अगर भीषण अकाल पड़ गया, बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना, दोनों स्थितियां एक जैसी है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि ही नहीं हुई या अत्यंत वृष्टि हो गई, दोनों स्थितियों में अन्न नष्ट हो जाता है और उस स्थिति में अब प्राण बचना संभव नहीं है, तब संलेखना ली जाए। जरासी बुढ़ापा, उसका कोई प्रतिकार नहीं है भैया। बुढ़ापे का कहीं कोई प्रतिकार आज तक सुनने में भी नहीं आया। इतना साइंस डेवलप हो गया, कोई ऐसा इंजेक्शन इजाद नहीं हुआ कि आप 70 साल के बाद लगा लीजिएगा, 17 के हो जाएंगे, उतने कम हो जाएंगे, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, है ना? तो ये निष्प्रतिकार, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है अपने पास में कि हम फिर से अपना जीवन ठीक वैसे ही बचपन से शुरू कर सके। उसके लिए बीच में मुझे मरण तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी मैं मरण को किस तरह से स्वीकार करूं, संलेखना लेना चाहिए। और चौथी स्थिति ऐसी निर्मित हो गई कि अब ऐसी व्याधि हो गई जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि असाध्य है, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, तब ऐसी स्थिति में भी संलेखना ही ग्रहण करनी चाहिए। ये चार स्थितियां निर्मित होने पर ही, हमेशा नहीं, संलेखना इन चार स्थितियों में के निर्मित होने पर ही ग्रहण की जाती। और क्यों? धर्माय, और किसी कारण से नहीं, अपने रत्नत्रय की रक्षा के लिए। धर्म क्या है? अहिंसा, रत्नत्रय, वो मैंने अपने चेतना में धारण करके रखा है, पूरा जीवन मैंने उस अहिंसा और सत्य का पालन किया है, अब उस अहिंसा और सत्य की रक्षा के लिए। तनु विमोचनम, शरीर छूटता है तो छूट जाने दो, मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए। होता यह है कि हम देह को छूटते जानकर सबसे पहले अपना धर्म छोड़ देते हैं देह को बचाने के लिए, और बचती नहीं है देह, और धर्म भी छूट जाता, दोनों चीजों से चले जाते हैं। इसलिए इतनी बड़ी शिक्षा हमें आचार्य भगवंत दे रहे हैं कि जो चीज जाने वाली है उसे क्यों रोक रहे हो, जो चीज संभाली जा सकती है उसे संभाल ले, और जो जाने वाली है उसे बहुत अनाशक्त होकर के समतापूर्वक जाने दे। ये प्रक्रिया जो है, आज वर्तमान में रोग हो जाने पर हम लोग फौरन डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर इनकार भी कर देता है तो दूसरे डॉक्टर के पास में, यहाँ का डॉक्टर इनकार कर देता है तो किसी विदेश के डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, जबकि हमें ये मालूम है कि अब इस रोग का कोई प्रतिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति का ये मन नहीं बनवाते हैं कि जब ये निष्प्रतिकार हो गया है, इस देह को छूटना अनिवार्य ही है, तो तुम समतापूर्वक शांति से इस देह को छोड़ो और अपने धर्म में स्थिर हो। ये इसके लिए अभी हमने कहीं कोई तैयारी नहीं की है, ऐसी कोई जगह नहीं है। एक छोटी सी कोशिश आचार्य महाराज के आशीर्वाद से सागर के भाग्योदय तीर्थ में इस बात की गई है कि वहां जाकर के अपने अंतिम क्षणों में कोई चाहे तो प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ और संलेखना पूर्वक अपनी देह का त्याग कर सकता है। अभी ऐसे 2-3 लोग वहां रह करके अपने जीवन में संलेखना को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आज हम इसकी तरफ हमारी रुचि ही नहीं है, हमें लगता है कि ये तो अभी और जी सकते हैं, अभी और जीने के लिए और क्या प्रयत्न हो सकता है, ये हम कोशिश करते हैं। लेकिन पूरा जीवन जी लिया है, अब अंतिम क्षण है तो कैसे विदा दें, इसकी कोई तैयारी नहीं, और कैसे इसको हम बढ़ा सकें, इसके लिए हम चिंतित होते हैं, कैसे शांति से उसे पूर्णता की तरफ ले जाया जाए, इसके लिए चिंतित नहीं होते, जबकि अनिवार्यता है उस देह के नष्ट होने की। एक नाविक का बेटा नाव चलाता है, छोटा सा है, 12 साल का है, उसकी नाव में बैठने वाले उससे कभी कभी चलते चलते पूछ लेते हैं कि हमेशा तुम्हें ही नाव चलाते देखता हूं, तुम्हारे पिता तुम्हारी मदद नहीं करते क्या? बोलता, पिता नहीं रहे। तो पिता को क्या हुआ था? बोले, नाव चलाते चलाते एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान में वो डूब गए। अरे पिता, ऐसे ही नाव चलाते चलाते डूब के मर गए? हाँ। तो माँ ने मदद नहीं की क्या? माँ ने मेरी मदद की, मैं तो बहुत छोटा था, तो मुझे नाव में बिठा करके माँ नाव चलाती थी। एक दिन नाव में बैठे बैठे तूफान में माँ भी डूब गई। तो क्या तुम अपने माँ पिता के एक ही बेटे थे? नहीं नहीं, हमारे से बड़े भाई और हमारे से बड़ी बहन भी थी। उनका क्या हुआ? वे भी यही नाव चलाते चलाते डूब करके नष्ट हो गए। अरे भाई, तब भी तुम इस नाव को चलाते हो? छोड़ो, अब ये बदलो इसको। तब उसका जवाब क्या है? जो लोग किनारे पर खड़े हैं वे भी मर जाते हैं, जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं वे भी मर जाते हैं, मैं नाव में बैठा हूं इसलिए मरूंगा ये मैं कभी नहीं सोचता। जिस दिन मरण आएगा उस दिन नाव में ही नहीं किनारे पर खड़ा व्यक्ति भी मरण को प्राप्त हो जाएगा। फिर मैं नाव चलाना क्यों छोड़ूं? फिर मैं जीवन जीना क्यों छोड़ूं? मैं ठीक से अपना जीवन जीऊंगा, मृत्यु से भयभीत होकर के मैं जीवन जीना ही छोड़ दूं? ऐसा नहीं है। ये हमारे बात आनी चाहिए, या हमारे आसपास हम लोगों को यह विचार दें। ये बहुत कहना चाहिए सिर्फ एक जैन दर्शन है जिसमें कि इस बात का उल्लेख किया गया है, वरना कहीं पर भी इस तरह संलेखना की चर्चा नहीं आई है। कर्मानंद जी का उदाहरण हमारे आचार्य महाराज इस संलेखना के दौरान दिया करते हैं। कर्मानंद जी बहुत बड़े गीता के विद्वान थे, जैन नहीं थे, वे जैन दर्शन का अच्छा अध्ययन करते थे और अध्ययन के दौरान उन्होंने ये कहा कि जैनियों की सब बातें ठीक लगती हैं पर मुझे एक ही बात ठीक नहीं लगती कि ये लोग अंत समय में इस तरह मरण की भी बात कहते हैं। अरे जीवन जीने की बात कहो तो ठीक लगता है, मरने की क्या बात करना? ये तो अपने हाथ से अपना घात कर देना है, ये अहिंसक लोग और ऐसे घात की बात क्यों करते हैं? यह समझ में नहीं आता, वो ये हमेशा कहा करते। और एक बार ऐसा हुआ उनके जीवन में, आयु ढलते ढलते और उन्हें बहुमूत्र व्याधि हो गई, बार बार बाधा होने लगी और बाधा इतनी बढ़ गई कि उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहा, जब चाहे तब वस्त्र अपवित्र होने लगे, मूत्र की बाधा इस तरह बढ़ गई। उनका रोज का नियम था कि स्नान करके गीता का पाठ करेंगे, लेकिन अब स्नान करते करते ही, स्नान करके बाहर आते ही पुनः वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं, बड़े विचलित हो गए, अब तो मेरा धर्म ही छूट गया। तब बिस्तर पर पड़े पड़े विचार करते हैं कि ठीक लिखा है इसीलिए शायद जैन दर्शन में, कि इसके पहले कि ऐसी स्थिति निर्मित हो, मैं अपनी देह के त्याग करने की पद्धति अपना लूं, संलेखना ग्रहण कर लूं, ताकि मेरा धर्म न छूट पावे। अब ये देह तो छूटनी ही है, मेरा धर्म भी छूटने को हो गया, छूट ही गया। वो बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं कि यदि मैं इस व्याधि से मुक्त हो गया तो मैं जैनियों के धर्म में कम से कम छुल्लक तो बन ही जाऊंगा और संलेख न लेऊंगा, बिल्कुल ऐसा निर्णय। और कहते हैं कि उस पुण्य के अर्जन से, या जो भी कहिएगा, संयोग कहिएगा, उनकी वो व्याधि ठीक हो गई, फिर वे छुल्लक बन करके और शांतिपूर्वक मरण को प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखना, ये उदाहरण है इस संलेखना की महत्ता के लिए। और दूसरा उदाहरण मैं आपको कहूं, हम और आप में से तो ऐसे कम ही विरले ही उदाहरण मिलते हैं, इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं। अभी तो मैंने संलेखना की और चर्चाएं नहीं की हैं, आज तो सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं, कि हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम तो विरासत में जो चीज हमें मिली है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको विरासत में नहीं मिली वो इससे लाभ ले रहा है। और विनोबा भावे, जिनका मैं हर बार नाम लेता हूं, लोगों को लगता होगा कि क्या और कोई उदाहरण नहीं मिलते इनको, क्या पुराणों के उदाहरण नहीं दे सकते हैं जो इन्हीं का उदाहरण देते हैं। भैया, दो चीजें मुझे उनकी बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। दे तो रहे हैं वो गीता का प्रवचन, लेकिन उसमें क्या कहते हैं सबसे शुरू में, जिसे देह और आत्मा के बीच भेद नहीं मालूम, जो देह और आत्मा को पृथक पृथक नहीं मानता, वह धर्म उसके जीवन में शुरू ही नहीं हुआ। ऐसा कौन कह सकता है जिसके लिए दृष्टि प्राप्त हो गई है, भेद विज्ञान हो गया है, वही कह सकता है ऐसा कि देह जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। यह देह और आत्मा पृथक हैं, जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक कितने भी धर्म की क्रियाएं कर लो, वो सब क्रियाएं जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएंगी। ये बात उनके मुंह से सुनकर के मुझे बड़ा सुखद लगता है। और दूसरी जो उन्होंने की कि संलेखना के पहले उन्होंने अपने जीवन में संलेखना ग्रहण की है, मरण से पहले जब उनके अस्वस्थता का समाचार आचार्य महाराज के पास में पहुंचा, सन 1982 की बात है, नैनागिर में चतुर्मास था, मेरी मुनि दीक्षा को मुश्किल से 2 महीने हुए थे 1982 में, और समाचार पहुंचा कि बाबा अस्वस्थ हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि बाबा को आशीर्वाद कहें, लेकिन हमने सुना है कि बाबा अभी शहद खाते हैं, उन्हें शहद नहीं लेना चाहिए, शहद तो ठीक नहीं है, क्योंकि वे दूध में शहद लेते थे। तो जैसे ही ये समाचार वहां पहुंचा तो विनोबा भावे ने क्या कहा कि इतनी देर बाद क्यों मुझे जगाया, अगर ये चीज खाने योग्य नहीं थी तो मुझे पहले कह देते, मैं जीवन भर भी इसका सेवन नहीं करता, अब आज से मैं इसको छोड़ता हूं। और उन्होंने तुरंत त्याग कर दिया और पूछते रहे कि किस दिन है भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण, कौन सी तारीख है वो। और ठीक उसी निर्वाण के दिन सुबह प्रत्युष की 5 बजे की वेला में अपने प्राण छोड़े संथारा ग्रहण करके संलेखना पूर्वक अन्न जल का चारों प्रकार के आहार का त्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारे भीतर इस संलेखना की महत्ता का थोड़ा तो कम से कम भान हो। ये जो हम जरा सी अस्वस्थता में उसे धर्म अरम तो एक तरफ रख देते हैं और अभक्ष भक्षण के लिए और हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और चाहे जिसके दिम में छोड़ देते हैं, ये हमारी जो प्रवृत्ति है वो बहुत हमारे लिए दुखदाई है। हमें अपने और दूसरे दोनों के लिए ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा विचार अपने भीतर उत्पन्न करना चाहिए कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी, मृत्यु को मैं जानूंगा कि निकट आ गई है, मुझे नहीं मालूम कि कब आएगी, लेकिन उसकी निकटता का अगर संदेह होने लगे या उसके निकट आने का संदेश मिलने लगे तो मैं सावधान हो जाऊं। अब आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। निकट आने का संदेह होने पर इतनी तैयारी होनी चाहिए, इसकी तैयारी का समय 12 बरस से अधिकतम और सबसे कम अंतर मुहूर्त। कोई चाहे तो अपनी देह छोड़ने के संकेत मिलने पर 12 बरस पहले से ही इसका अभ्यास कर सकता है। अधिकतम 12 बरस तक संलेखना का समय है, और या कि मालूम पड़ने पर कि अब तो समय शेष ही नहीं रहा, अंतर मुहूर्त के लिए भी संलेखना धारण कर सकता है। बीच का समय तो पड़ा ही हुआ है, अधिकतम 12 बरस और न्यूनतम अंतर मुहूर्त। 12 बरस की कि हमारे पूरे जीवन की साधना का प्रतिफल अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिना स्तुपते। जो सर्वज्ञ भगवान है उन्होंने पूरे जीवन की तपस्या का फल अंत समय में संलेखना को माना है। आपने वर्षों उपवास किए हो, आपने वर्षों मौन धारण किया हो, आप वनवास में रहे हो, आपने जाने कितनी साधना की हो, लेकिन आखिरी समय अगर आप समता पूर्वक अपनी देह नहीं छोड़ पाए तो मानिएगा आपकी वह सब साधना अकारथ चली गई, अकारथ चली गई। अंत समय में मानस में लिखा हुआ है कि अंत समय भगवान का राम का नाम याद आना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अपने यहां लिखा हुआ है कि अंत समय नमोकार मंत्र का स्मरण होना बहुत कठिन है। पानी लाओ, उसको बुलाओ, हमारी ये बिस्तर ठीक कर दो, तुम सब कोई हमारी सेवा नहीं करते, हमने जिंदगी भर तुम्हें कितना कुछ किया, बस यही शिकायत से भरा हुआ चित्त रहता है, शांत और संतुष्ट चित्त नहीं रहता। इसलिए ये अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए, देना चाहिए इस बात की शिक्षा कि शांतिपूर्वक जीवन जियो, संतोषपूर्वक जीवन जियो, ताकि विदा के समय असंतोष न रह जाए विदा के समय और मन में शिकायत न रह जाए, क्योंकि सारे जीवन की तपस्या चाहे तो एक क्षण में नष्ट कर सकते हो, चाहे तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं उस संलेखना की प्रक्रिया के दौरान। अंतर मुहूर्त की संलेखना का उदाहरण मैं सुना करके बस आज अपन इतनी ही चर्चा करेंगे। संलेखना की कितनी विधियां हैं, किस किस तरह से की जाती है, कौन कौन उसमें सहयोगी बनता है, ये सब विस्तार है। आज तो सिर्फ अपन ने संलेखना लेनी चाहिए इसका मन बना लिया, कब लेनी चाहिए ये भी जान लिया, कैसे लेनी चाहिए, किसके सानिध्य में लेनी चाहिए, ये अपन चर्चा अलग कर लेंगे। हमारे साथ में तो नहीं पढ़ता था, वो हमसे जूनियर था, हमसे तीन साल बाद उसका एमटेक कंप्लीट हुआ 83 में, और उसने मुझे अपने जीवन का संस्मरण सुनाया। आचार्य महाराज के पास हमेशा उनकी सेवा में वो रहता है, तो माइनिंग के लिए और जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है वो इंस्पेक्शन के लिए गया था, सर्वे के लिए गया था। अब कई सौ फुट एक्सप्लोर हो चुका है, खाई बन गई है और ब्लास्टिंग समय समय पर होती रहती है। वो जब नीचे पहुंचा और उसे वहां पर सायरन बजते हैं, 2 मिनट के लिए समय मिलता है कि आप अपने जो भी सेफ्टी पैड है उस तक पहुंच जाएं, फिर ब्लास्टिंग होगी, तो ये वार्निंग हुई और सब लोग सेफ्टी पैड तक पहुंचने के लिए और चढ़ने लगे और सभी लोग पहुंच गए। वो सिर्फ दो चार कदम पीछे रह गया और उतने में ब्लास्टिंग हो गई। ब्लास्टिंग होने से पूरी पहाड़ी थर्रा गई। उससे हुआ ये कि उसके पैर भी डगमगा गए और वो फिसल गया। उतनी ऊंची 500 फीट की पहाड़ी नीचे की तरफ ढलान, उस पे से उसने लुढ़कना शुरू किया और वो देखता है कि इतना बड़ा सारा पत्थर भी उसके साथ ही उसके ठीक ऊपर लुढ़कता आ रहा है। अब चाहे तो घबरा करके प्राण छोड़ दें, पर उसने मालूम क्या करा, लगता है कि नीचे पहुंचते पहुंचते और ये पत्थर मेरे ऊपर आएगा तो प्राण तो निकल जाएंगे, ये तो पक्का हो गया। अब ऐसी स्थिति में करना क्या, इतने दिन मुनि जनों की सेवा करी, महाराज के पास रहे, उन्होंने यही तो सिखाया था। कितने वर्ष की उम्र है, 21 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं, 81 और 91 वर्ष वालों को भी रात में भोजन नहीं छूट रहा, पानी नहीं छूट रहा, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हां, 21 वर्ष वाला वो व्यक्ति लुढ़कते हुए कहता है पंच परमेष्ठी का स्मरण, आचार्य महाराज की जय, मैं उनकी साक्षी पूर्वक इस उपसर्ग से अगर निवृत्त हो गया तो ही चारों प्रकार के आहार ग्रहण करूंगा, वरना मृत्यु पर्यंत चारों प्रकार के आहार का त्याग। ये कोई बलवान व्यक्ति ही कर सकता है, बहुत धैर्यवान, बहुत साहसी व्यक्ति के बस का काम है। ये कायरों के बस का काम नहीं है, ये क्षत्रिय के बस का काम है, ये तराजू तोलने वाले का काम नहीं। हां, ये जो तराजू तोलने वाले लाभ हानि वाले लोग हैं ना, ये तो घबरा जाते हैं। इसलिए ये धर्म जो है क्षत्रियों का ही है। ये सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे और हम उनके उत्तराधिकारी मानते हैं अपने आप को, तो फिर ऐसा ही छात्र धर्म हमारे भीतर भी होना चाहिए, इतना ही साहस हमारे भीतर भी होना चाहिए। वो उसी साहस का परिणाम है कि उसने क्षण भर भी देर नहीं की। अंतर्मुहूर्त तो बहुत होता है, क्षण भर में डिसीजन ले लिया कि पंच परमेष्ठी की साक्षी आचार्य महाराज को स्मरण करके चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, अगर जीवित रहा तो ठीक है और नहीं तो मरण है ही। लुढ़कता चला जाता है, ऊपर से पत्थर भी लुढ़क रहा है नीचे पहुंच करके, और ऐसे जैसे कि वो पत्थर उससे आकर के टिक गया है और वो बेहोश हो चुका। सारे लोगों ने सोच लिया कि गया, सब नीचे उतर करके आते हैं, देखते हैं तो नब्ज अभी चल रही है, सांस अभी बाकी है। तब उसे थोड़ी देर उपचार के बाद जब होश में लाते हैं तो वो तो होश में आ जाता है और नमोकार मंत्र उसके मुंह से निरंतर उच्चरित हो रहा है, निरंतर। वो किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा है, सिर्फ नमोकार बोल रहा है, तो लोग और चकित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मति भ्रम हो गया हो। हाँ, कुछ ना कुछ हो गया हो सकता है, ये तो यही बोलता जा रहा है, क्या बोल रहा है, नमो रंधानम नमो सिद्धानम। होश में आने के बाद यानी बेहोशी की हालत में भी उसने वह नहीं छोड़ा है, भीतर कहीं अनकॉन्सियस में वो चीज चलती रही तब तो चेतना आने पर भी वही रिपीट हो रहा है। ये संलेखना ऐसी ही प्रक्रिया है, ऐसी ही साहस की प्रक्रिया है, इतनी ही समता की प्रक्रिया है, जिसमें कि हमने जान लिया कि अब अगर मरण निश्चित है तो मैं तैयार हूं और अगर बच जाऊंगा तो जीवन जीने के लिए तैयार हूं, अगर मरण निकट है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं और अगर जीवन है तो जीवन के लिए मैं तैयार हूं, दोनों के लिए तैयार हूं। ऐसी स्थिति हमारी भी हम चाहें तो कभी निर्मित हो। हम तो कैंसर वाले पेशेंट को यहां वहां ले जाते भटकते हैं कि शायद ये उपाय हो, शायद ये उपाय हो, कोई उपाय कारगर नहीं होता, हम व्यर्थ ही भटकते रहते हैं। और अगर हम संतोषपूर्वक जीवन जिए तो कई वर्षों अपने जीवन को शांति से जी सकते हैं। इसका उदाहरण भी विनोबा भावे के आश्रम में गीता बहन, जिनको कि कैंसर घोषित कर दिया गया, तब उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा अब जब ईश्वर ने, वो अपनी मान्यता के हिसाब से, जब ईश्वर ने चिट्ठी भेजी दी है कि आ जाओ, हाँ वो कह रही है कि कैंसर तो चिट्ठी है उनने भेजी है कि आ जाओ, अब थोड़ा ही समय रह गया है जीवन का, अब तुम्हें बुलावा आ गया, तो बोलती जब ईश्वर का बुलावा आ गया है तो अब जरा सबसे क्षमा मांग करके और मैं ईश्वर की आराधना करूं उसके पास पहुंचने से पहले। तो क्या करोगी? कुछ नहीं बाबा, अब इस बिल्डिंग में नहीं रहूंगी, अब तो नीम के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी अपने हाथ से बनाकर मिट्टी के बर्तन में और उबली हुई सब्जियां और गर्म पानी पीऊंगी, जितना जीवन शेष है उतने के लिए मेरा संकल्प। और वे ऐसे ही जीती रहीं तीन चार साल के बाद जब उनका फिर से एग्जामिन किया गया तो वे कैंसर से मुक्त हैं, तो उनसे कहा कि अब तो आ जाओ यहाँ वापस। बोले नहीं, अब तो जितने दिन शेष हैं, कितने भी दिन हो ऐसे ही जीवन जीऊं, और 15 साल जी, 15 साल ये उदाहरण है, ऐसे और भी उदाहरण है। लेकिन हम तो फौरन जो है कोई व्याधि हुई, कैंसर हुआ तो आधे तो मर ही गए, घर के लोग भी आधे मर जाते हैं, और वो व्यक्ति उसको तो पूरा ही मार देते अपन कि कैंसर हो गया, जबकि हमें उसे समझाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो तुम्हें तैयारी करने के लिए अच्छा हुआ कि मौका मिल गया, ये तो हम लोग हैं जिनको तैयारी का मौका ही नहीं मिल पाता, ये तो तुम जैसे पुण्यात्मा जीव हैं जिनको तैयारी का मौका मिल गया, ऐसा कहना चाहिए कि अब कितना रहा, 2-4 साल रहे, कर लो तैयारी, सब छोड़ो दुनिया भर से, क्या मतलब क्या करना। एक दमोह के व्यक्ति को स्वप्न आया कि 1.5 साल और आयु रही है, उसके बाद मर जाऊंगा, आचार्य जी के पास आए, क्या करना। आचार्य जी ने कहा 1.5 साल और हैं तो धर्म ध्यान कर लो, छोड़ दिया घर, उसके बाद 12 साल जिए। जो मृत्यु से भयभीत है वो तो तुरंत ही मर गया, उसमें देर क्या है, और जो मृत्यु से भयभीत नहीं है उसके स्वागत में खड़ा हुआ है वो वास्तव में जीवन जीना जानता है, और उसे ही जीवन जीने का अधिकार है। ये डरे हुए लोगों को जीवन जीने का क्या अधिकार है। हमें इसलिए अपने भीतर पूरी जागृति के साथ अच्छे से जीवन जीते हुए, और मृत्यु के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं, ऐसी तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु तो ऐसी है जैसे कि सूरज सुबह उगता है और शाम अस्त हो जाता है, हम कभी नहीं कहते हैं कि सूरज का जन्म हुआ और सूरज का मरण हो गया, हम तो कहते हैं सनराइज सनसेट। ठीक ऐसे ही हमने जीवन जीना शुरू किया था, सबको रोशनी देते हुए अपने जीवन को भी रोशन करते हुए जिए, और अब समय पूरा हो गया, विदा, अस्त हो जाते हैं। इतना ही अगर हमारा भी प्रयास हो तो हमारा जीवन हम सार्थक बना सकते हैं। मृत्यु हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, और जीवन जीने की ठीक पद्धति मृत्यु को सार्थक बनाती है, इसलिए हम ठीक जीवन की पद्धति अपनाएं ताकि जीवन भी सार्थक हो और हम मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार कर सकें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तम तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, हव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणि, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,